हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते हमने विश्वनाथ चक्र ठाकुर द्वारा कृत माधुर्य कादंबनी, इस बहुत ही दिव्य ग्रंथ से हमारी चर्चा प्रारंभ की थी। और यदि आप लोगों को याद है क्या क्या हमने पिछले हफ्ते कौन से विषयों में चर्चा की। भक्ति में आने वाली बाधाएं, यह है विषय वस्तु माधुर्य कादंबनी के। और बहुत ही विस्तार से विश्वनाथचार्य ठाकुर न केवल उन अनर्थों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो अनर्थ हम व्यक्तिगत रूप से और बहुत ही सीधे तरीके से अनुभव करते हैं, बल्कि वो उन अनर्थों के और भी अंदर जा रहे हैं कि इन अनर्थों के कारण क्या है। और सूक्ष्म अनर्थ, उन स्थूल अनर्थों में से जो सूक्ष्म अनर्थ हैं, वो सूक्ष्म अनर्थ कौन से हैं जिनके वजह से हम हमारे भजन में ठीक प्रकार से निष्ठा नहीं रख पाते और श्रवण और कीर्तन साधना भक्ति में वो उत्साह उल्लास नहीं आ पाता। तो हमने पिछले हफ्ते हमारे प्रवचन को संपन्न किया था श्रद्धा के दो प्रकार, स्वाभाविकी और बलोत्पादिका। स्वाभाविकी श्रद्धा होती है क्योंकि साधना भक्ति में जब तक हमारी श्रद्धा बनी है तब तक हमारी साधना भक्ति में वो उत्साह रहता है, परंतु जब हमारी श्रद्धा शिथिल होने लगती है तो धीरे धीरे वो भक्ति में जो उत्साह है वो कम होने लगता है। तो इसलिए नैसर्गिक एक श्रद्धा हमारे अंदर होती है जो कि पिछले भक्ति के कार्यों की वजह से, पिछले जन्म के भक्ति के कार्यों की वजह से होती है। और एक है बलोत्पादिका जो कि बाह्य रूप से प्रेरित हम अपने अंदर करते हैं, सम विचारी साधुओं जैसे प्रशिक्षकों का संग कर। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर इन दोनों श्रद्धाओं के विषय में कहते हैं कि यदि इनमें से कोई एक भी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है तो भक्ति कर पाना असंभव है। या तो हमारे अंदर स्वाभाविकी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, या वो स्वाभाविकी श्रद्धा नहीं है तो वो बलोत्पादिका होनी चाहिए, फिर वो उत्पन्न हमें करनी है। और जब तक ये श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक भक्ति शुरू करना और भक्ति में आगे बढ़ना दोनों असंभव है। और हम इस भौतिक संसार में जो कुछ करते हैं वो हम श्रद्धा के ही बलबूते पर करते हैं, चाहे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय भोग में भी क्यों ना लगा हो, उसे श्रद्धा है कि मैं इन पैसों से ये कुछ खरीद पाऊंगा और ये जो मैं खरीदा हूं और जो कुछ मेरा घर या गाड़ी या जो कुछ, ये मुझे कोई इंद्रिय भोग देने वाली है, तो वो वस्तु में श्रद्धा होती है। वैसे ही चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हालांकि भौतिक उदाहरण बहुत से हमारे आचार्य इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक नव युवक एक नव युवती के प्रति आकर्षित होता है, एक भौतिक उदाहरण है, उसी प्रकार से मेरी चेतना आप में लगी रहे हे कृष्ण। रूप गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं क्योंकि इस भौतिक संसार में ऐसे जो उदाहरण हैं इनसे हम रिलेट कर पाते हैं। और हालांकि हमारे आचार्य हमें इन भौतिक उदाहरणों से समझा रहे हैं, परंतु हमें केवल उन उदाहरणों का सिद्धांत लेना है। तो जब हम कहते हैं कि भौतिक इंद्रिय भोग में जिसकी श्रद्धा लगी होती है, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा जब भक्ति में लगती है, तो हम जैसे कि पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे कि तब हम भक्ति में उत्साह से, निश्चयता से और धैर्यता से भक्ति कर पाएंगे। और हमने कौन सा उदाहरण लिया था उत्साह, निश्चय और धैर्य के लिए? सत्स्वरूप महाराज की पुस्तक से, हलवा। हलवा बनाते समय हमें ये तीनों चीजों की आवश्यकता है। उत्साह होना चाहिए और बनाने के लिए, खाने के लिए बहुत उत्साह होता है तो बनाने के लिए उत्साह होना चाहिए, और हलवा बनाते समय हमारे अंदर धैर्य और निश्चय होना चाहिए कि ये बनेगा। क्योंकि यदि आपने कभी हलवा बनाया हो तो आपको समझ में आएगा कि हलवा बनाने के लिए बहुत धैर्य लगता है, वो जो सही मात्रा में जब वो बनता है तब। तो श्रद्धा के ये दो प्रकार, और इसके पश्चात हमने चर्चा की थी भजन क्रिया के दो प्रकार। कौन से दो प्रकार? अनिश्चितता और निश्चितता। शायद आज ठीक है, यहां पे पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। अनिश्चितता भजन जिसे कहते हैं अस्थिर भजन, और निश्चितता स्थिर भजन। तो हम में से कितने हम अनुभव करते हैं कि हमारा भजन कौन से प्रकार का है? हम में से कितनों का भजन निश्चितता है? नहीं, अनिश्चितता। शायद हम सब का भजन अनिश्चितता स्तर पर होगा। तो अनिश्चितता स्तर, इसके विषय में बहुत ही विस्तार से अब चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो अस्थिर भजन होता है हमारा, इनके कारण क्या है और इनके प्रकार क्या है। तो बहुत ही विस्तार से ये बता रहे हैं, और मैं जब इसे पढ़ रहा था तो ये जो शुरुआत में छह प्रकार अब हम चर्चा करेंगे, इनके नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि आप नाम देख लीजिए, देखते हैं आपको कैसा लगता है। उत्साहमयी, सबसे पहला प्रकार अस्थिर भजन का। घन तरला, व्यूढ़ विकल्प, विषय संग्रह, नियमाक्षम, तरंग रंगिनी। हो सकता है नाम सुनकर लगे कि अरे ये तो होना चाहिए, इतने अच्छे नाम है तरंग रंगिनी, घन तरला, उत्साह, ये सब कुछ यदि हो तो फिर हाँ हम भी कुछ हैं भक्त ऐसा लगे परंतु इनके सब सारे जो अर्थ हैं वो सामने लिखे हुए हैं। देखिए, उत्साहमयी, आकस्मिक उत्साह, घन तरला, आलस्य, व्यूढ़ विकल्प, संशयात्मक भक्ति, विषय संग्रह, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, नियमाक्षमा, अवास्तविक प्रतिज्ञाएं, तरंग रंगिनी, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा, इनकी इच्छाएं। तो देखिए, ये हमारे आचार्य चक्रवर्ती ठाकुर ये और कितना खोद खोद कर हमारे अनर्थों के अंदर जा रहे हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सारे अनर्थ अनुभव तो किए होंगे, परंतु इनके विषय में जानते थे कि ये हैं हमारे अंदर और हम ही इनको सिंचन इनका कर रहे हैं। हम लोग इसके विषय में ज्यादा कुछ कभी सुने भी नहीं थे और कभी अपने आप को परखे भी नहीं थे। कि हमें तो लगता था कि हाँ भाई, इतने सालों से सोलह माला हो रहा है और पूरा टाइम पे होता है, अब तो सोलह माला पूरा डेढ़ घंटे में। जैसा ही डेढ़ घंटा हुआ, जो सोलह माला है वो पूरा नीचे, तो एक्सपर्ट हम बन जाते हैं टाइम पर सोलह माला करने पर, और देखते हैं कि स्पीड बहुत अच्छा हो जाता है और कई बार नींद भी नहीं आती तो लगता है कि नींद नहीं आ रही, तो इसलिए माला बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि नींद नहीं आ रही। और बहुत सी ऐसी चीजें जिनके वजह से हम एक भ्रम में रहते हैं कि हम साधना भक्ति में अब प्रगति कर रहे हैं। परंतु यहां पर जब डॉक्टर साहब चक्रवर्ती ठाकुर ये हमारा रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ब्लड रिपोर्ट में आता ना क्या क्या है, क्या क्या लेवल है आपका डॉक्टर साहब। तो वैसे ही चक्रधर ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो ये सारी चीजें हमारे अंदर, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं छह, तो इसमें एक करके हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले है उत्साहमयी भक्ति। उत्साहमयी या आकस्मिक उत्साह, उत्साह होना बहुत अच्छा है, परंतु ये जो उत्साहमयी चक्रधर ठाकुर जिसके विषय में बता रहे हैं, ये आकस्मिक उत्साह, इसका अर्थ है कि वो स्थिर नहीं रहता, वो उत्साह, उस उत्साह अस्थिर रहता है, इसलिए वो आकस्मिक अचानक उत्साह कभी कभी आ जाता है और उसके पश्चात फिर वो उत्साह कहां गया वो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तो आकस्मिक उत्साह, और इसमें वो बताते हैं कि अचानक उत्साह का विस्फोट होता है, कभी कभी अचानक ऐसा लगता है कि मायापुर जाकर बस उधर ही अभी बैठ कर भजन करना चाहिए। मायापुर यात्रा के बाद लगता है कई बार कि अब उधर ही बैठ जाओ, एक कुटिया मना लो और इतना अच्छा, क्या देखो प्रसाद भी इतना अच्छा और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा, इतने सुंदर यहाँ पे अर्चा विग्रह हैं और यहाँ पर, तो एक कई बार ऐसे बीच में विस्फोट हो जाता है उत्साह का। परंतु विस्फोट जब होता है, जैसे कि दिवाली में इतने सारे विस्फोट हुए, तो जब विस्फोट होता है तो विस्फोट की क्रिया क्या होती है कि अचानक उस समय के लिए जोर से आवाज होती है और ध्वनि निकलती है, परंतु कितने समय के लिए, कुछ सेकेंड, और उसके पश्चात सब कुछ, और सब कुछ तो खत्म हो जाता है और शांत हो जाता है, परंतु उसके साथ प्रदूषण और ये सब कुछ फैलता है। तो ये सबसे पहला लक्षण है कि एक विस्फोट होता है उत्साह। तो कई बार ये जो उत्साह का विस्फोट होने लगता है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं, विस्फोट में विस्फोट हुए जा रहे हैं हमारे साधना भक्ति में, तो ये प्रगति हो रही है हमारी। चक्रधर ठाकुर के अनुसार ये उत्साह का जो विस्फोट है, इसके विषय में हमें कुछ करना है कि भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कभी विस्फोट और कभी ऐसा है कि वो पानी की तरह एकदम, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, तरल, उसमें कुछ जान ही नहीं है। तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए भक्ति के अंदर, और ये जो उत्साहमयी भक्ति है, ये अहंकार या प्राइड या गर्व इससे उत्पन्न होती है कि कई बार हमें लगता है कि हम भक्ति में जितना ज्यादा उत्साह दिखाएंगे उतना ज्यादा हमें भक्ति में हमारी प्रशंसा होगी। तो वो प्रशंसा जो है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है, और उसके वजह से फिर हम इस प्रकार की आकस्मिक उत्साह या उत्साहमयी भक्ति में लगते हैं। और इसका भी मूल कारण, उसका भी मूल कारण यहां पर चक्रधर ठाकुर बताते हैं कि हमारे अंदर एक स्वाभाविक रूप से, हालांकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इस भौतिक संसार में रहते हुए वो स्वभाव हमने ले लिया, स्वार्थ, स्वार्थीपन या स्वार्थी चेतना। तो ये जो उत्साहमयी भक्ति है, ये इसका मूल कारण यहां तक जाता है कि हमारे अंदर ये स्वार्थी चेतना है। ये स्वार्थी चेतना के वजह से हम भक्ति को भोगना चाहते हैं, क्योंकि आंतरिक इच्छा हमारी, इस भौतिक संसार में हम क्यों आए हैं, इस संसार को भोगने के लिए। तो जब भक्ति में भी हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ भोग निचोड़ना चाहते हैं हमारे लिए। तो ये जो उत्साह दिखने को आता है, कई बार वो उत्साह केवल उस भक्ति को भोगने का एक स्वरूप है। तो चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर बता रहे हैं कि ये दो मूल कारण हैं इसके, और लक्षण ये है कि उत्साहमय भक्ति में परिणाम के लिए अधीरता होती है, इम्पेशियंस फॉर रिजल्ट्स, कि कई बार ऐसा लगता है कि भक्ति अभी प्रारंभ हुई है और एक दो साल, तीन चार साल, हो सकता है 10-15 साल बीत गए हमारी भक्ति के, और उसके पश्चात फिर अधीरता हो जाती है कि भाई जो कुछ चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, भजन करने से आंखों से अश्रु आते हैं, रोमांच और ये सारे जो अष्ट विकार हैं, ये अष्ट विकार में से एक भी विकार नहीं, और दूसरा विकार अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो अष्ट विकार कब उत्पन्न होंगे? तो हालांकि वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, परंतु और भी बहुत सी स्थितियां जिनके विषय में हम कल्पना करते हैं और चिंता करते हैं कि ये सारे परिणाम क्यों नहीं हो रहे। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जब शुरू शुरू में भक्ति में आए थे, जैसे एक महीना हुआ भक्ति में आए, और भक्ति में आते ही आपने सभी भक्तों को देखा, मंदिर में सभी भक्ति कर रहे हैं, अर्च विग्रह की पूजा, हरिनाम, नृत्य, कीर्तन, प्रसाद, प्रवचन, ये सारे जो अंग हैं भक्ति के, जब आप लोगों ने अनुभव किए, तो आपको याद होगा कि आपके अंदर एक प्रकार का उत्साह जागृत हुआ और एक आकांक्षा जागृत हुई कि ये जो भक्त हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कोई या ब्रह्मचारी हैं या कोई सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, अपने आश्रम में स्थित रहकर ये कैसे इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस भक्त की जो भक्ति के परिणाम है उससे आकर्षित होते हैं। जो वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने जो अब तक भक्ति की है और अब तक भक्ति करने की वजह से जो परिणाम उनमें दिख रहे हैं, हम उन परिणामों से आकर्षित होते हैं कि देखो कितना अच्छा ये प्रवचन देते हैं, कितना अच्छा गाते हैं और कितना अच्छा ये अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। तो वो जो परिणाम है उनके भक्ति करने का, उनसे हम आकर्षित होते हैं, और कई बार हम इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये परिणाम मेरे अंदर भी आएंगे। और ये एक प्रकार की भौतिक इच्छा है कि हम परिणामों के प्रति आकर्षित होते हैं। भक्ति करने का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि परिणाम भगवान देखें और उनके अंदर वो आनंद जागृत हम कर पाए हमारी भक्ति की वजह से, उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाती, न कि ये सारे जो भौतिक परिणाम हैं इन्हें पाने के लिए। तो उत्साहमय भक्ति में जब व्यक्ति अधीर हो जाता है, उसके अंदर कोई धैर्यता नहीं रहती, तो ये लक्षण है उत्साहमय भक्ति, और कच्चा और परिपक्व उसका स्वरूप है कि लगता ऐसा है कि उत्साह के वजह से, वो जो आकस्मिक उत्साह है, लगता ऐसा है कि वो आकस्मिक उत्साह जो है उसके वजह से हम अपनी भक्ति में बहुत परिपक्व हुए, परंतु उल्टा है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बिल्कुल उल्टा है उसका, कि वो आकस्मिक उत्साह जो है वो प्रतीक है, वो लक्षण है कि हमारी भक्ति अभी तक पक्की नहीं हुई है, और इसलिए ये बर्स्ट ऑफ ज़ील जिसे कहते हैं, ये विस्फोट जो हो रहा है, ये विस्फोट उसका परिणाम होता है और दृढ़ता का भाव उसमें देखने को मिलता है उसमें धीरे धीरे, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए उत्साह रहता है, थोड़े समय के लिए उत्साह रहने के वजह से फिर दृढ़ता उसमें कम हो जाती है भक्ति में, और दृढ़ता कम होने के वजह से फिर वो श्रद्धा कम होती है, श्रद्धा कम होने के वजह से फिर धीरे धीरे भक्ति में कोई उत्साह नहीं रह जाता। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, ये आकस्मिक जो उत्साह है हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्साही नहीं होना चाहिए, परंतु वो जो उत्साह है वो प्रामाणिक उत्साह होना चाहिए, अप्रामाणिक उत्साह नहीं होना चाहिए। घन तरला आलस्य, चक्रवर्ती ठाकुर इसे कहते हैं कि भक्ति में कई बार हमारी भक्ति बहुत घनीरूप होती है। घनीरूप समझते हैं, गाढ़ी भक्ति बहुत गाढ़ी होती है। जैसे जब दूध निकलता है गाय से तो गाढ़ा रहता है, परंतु घर तक पहुंचते पहुंचते तरल हो जाता है। तो हमारी भक्ति भी कई बार जब शुरुआत में एकदम घनीभूत होती है, परंतु धीरे धीरे कुछ महीने बीते, वर्ष बीते, फिर उसमें तरलता आती है। धीरे धीरे इस भौतिक संसार का जो पानी है वो मिलने लगता है। तो इसमें भोग और त्याग की वृत्ति पैदा होती है। ये घन तरला, ये जो स्थिति होती है हमारी साधना भक्ति की, इसमें भोग और त्याग। तो हम साधना भक्ति में बहुत सी चीजों का तुरंत भोग करना चाहते हैं और बहुत सी चीजों का तुरंत त्याग भी करना चाहते हैं, या वही चीजों का त्याग करना चाहते हैं जिन चीजों का भोग करने की इच्छा हुई। जैसे कि एकादशी, तो देखा कि कोई भक्त निर्जला एकादशी करते हैं, कल से निर्जला एकादशी, कल से मतलब अगली एकादशी से, तो अगली एकादशी निर्जला, तो फिर हम निर्जला एकादशी शुरू कर दें। और फिर ऐसा लगता है कि कई बार देखते हैं कि कई हमारे जो भक्त हैं वो हर चीज को जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं कि एकादशी में फीस्ट क्यों होना चाहिए। तो उसके लिए भी चैतन्य लीला है कि चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन फीस्ट लिए थे, चैतन्य महाप्रभु फीस्ट लिए थे, तो फिर एकादशी हम निर्जला कर रहे हैं, हमने वो कथा सुनी, चैतन्य महाप्रभु ने फीस लिया, चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में हमें सिखाने आए थे। और फिर श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी ने, मैंने तो कभी सुना नहीं श्रील प्रभुपाद जी ने कभी निर्जला एकादशी, और श्रील प्रभुपाद जी ने निर्जला एकादशी के विषय में क्या कहा, जाकर सब कुछ त्यागो इसको, कोई काम की नहीं। एकादशी, एकादशी में भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद कोई ये होता है, उसको तो हर समय दिव्य रहता है, तो लेना ही चाहिए उसे। तो ये भोग और त्याग, भोग और त्याग। और उसके पश्चात फिर कोई भक्त आके बोलते, अरे वो निर्लज्ज एकादशी है, वो एकादशी जिसमें कुछ पिया जाए खाया जाए, वो निर्लज्ज एकादशी, ठीक है फिर से निर्जला एकादशी। तो भोग और त्याग की वृत्ति, ये एक लक्षण है घन तरला। और कई बार हिचकिचाहट होती है, भक्ति के कोई सारे अंग होते हैं उनका पालन करने में हिचकिचाहट होती है कि कार्तिक का महीना आ रहा है, चार माला एक्स्ट्रा करूं या ना करूं, यदि मैं चार माला एक्स्ट्रा करूंगा तो मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, तो ज्यादा पढ़ाई करूं या ज्यादा माला करूं, पढ़ाई मतलब प्रभुपाद की पुस्तकें, और क्या ज्यादा सेवा करूं, सेवा ज्यादा करूं, प्रभुपाद की पुस्तकें ज्यादा पढ़ूं कि माला ज्यादा करूं। तो हर समय हम इस दोनों में घूमते रहते हैं, क्या करूं। तो कई बार ठीक है, कार्तिक का आधा महीना चार माला ज्यादा, आधा महीना लेकिन सेवा, फिर उसमें से भी हम काट छाट करके सेवा, कार्तिक के महीने में मायापुर जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए। और कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें हम हिचकिचाते हैं बहुत सी चीजों में। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये भी एक अस्थिर भजन का लक्षण है, हिचकिचाहट और भावुकता युक्त कार्य। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम यदि कृत्रिम रूप से भावुकता दिखाएं, कृत्रिम का अर्थ है आर्टिफिशियली, यदि हम कृत्रिम रूप से कुछ भावुकता दिखाएं तो वो भक्ति के समान दिखती है, ऐसा हमें लगता है। तो एक हमारे भक्त, वो जप करते समय उनको रोना नहीं आता था, तो उनको लगता कि जब तक रोना नहीं आता तब तक जप करने का फायदा क्या। तो वो प्रयास करते थे, रोना कैसे आएगा, तो बहुत सोचते थे। तो वो बताते थे कि कई बार रोना लाने के लिए वो ऐसे उनकी घटनाओं के विषय में सोचते थे जब पहले कभी ऐसी घटना हुई थी जब उन्हें रोना आया था। तो जब करते समय वो उन घटनाओं के विषय में सोचते थे कि मुझे जब टॉफी नहीं दी थी मेरी माँ ने तो रोना आया था। तो इस प्रकार से अपने ही खुद ही कुछ शुरू कर दिया, भावुकता युक्त कुछ भी। और कई बार भक्ति में हम सोचते हैं कि जब तक हम किसी दूसरे भक्त के प्रति एकदम भावनापूर्ण, जरूरत से ज्यादा भावनापूर्ण आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक वो जो भक्तों का, वैष्णव का संग है, वो ठीक प्रकार से हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम वैष्णव के संग में भी बहुत भावना में बह जाते हैं, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद हालांकि बहुत सी ऐसी स्थितियां या घटनाएं हुई जब श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के भावना में थे, परंतु उन्होंने कभी उसे बाहरी रूप से दर्शाया नहीं। परंतु कई बार भक्त देख लेते थे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक दो बार जब राधा माधव गा रहे थे तो प्रभुपाद जी आंख बंद कर राधा माधव गा रहे थे, और जब प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें खोली तो थोड़ी थोड़ी आंसुओं की बूंदें नीचे टपक रही थी। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको पहुंचकर, श्रील प्रभुपाद जी दिखाना नहीं चाहते थे कि उनके अंदर क्या भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। तो कई बार हमें लगता है कि जब तक हम कीर्तन करते समय रोए नहीं, जब तक हम जप करते समय रोए नहीं, जब तक, हालांकि वो स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, परंतु उसे कृत्रिम रूप से पैदा नहीं करना है। ग्लिसरिन लगाने से कुछ आता है, आंसू आते हैं शायद, पता नहीं आंसू आते हैं कि पानी क्या आता है, कुछ तो आता है बाहर जो फिल्मों में वो लोग डालते हैं उस समय रोने के लिए, या उसे क्या कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू नहीं होने चाहिए, आंसू होने चाहिए गजेंद्र के। तो भावुकता युक्त कार्य, व्यूढ़ विकल्प। यदि आपको बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, आप हाथ कर ऊपर। व्यूढ़ विकल्प, संशयात्मक भक्ति, इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है। और सबसे ज्वलंत उदाहरण इसका है, कौन से आश्रम में मुझे भक्ति करनी चाहिए और बहुत बार भक्त आते हैं, प्रभु क्या करूं, कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस संन्यास ले लेना और दिन रात 24 घंटा हरिनाम सेवा प्रचार और इसी में लग जाना। परंतु फिर मैं जब देखता हूं कि अन्य सारे भक्त, वो लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं अपने गृहस्थ आश्रम में, और व्यवसाय भी है उनका, और घर में ऑल्टर है इतना अच्छा, तो घर एक मंदिर हो जाता है, फिर वो भी मंदिर ही है, और मंदिर में भी हम जो भी कर रहे हैं आपके अनुसार वो भी फुल टाइम सेवा, तो वहां जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, क्या करूं मैं, संन्यास ले लूं सीधा कि अभी ब्रह्मचारी के थ्रू जाऊं, वानप्रस्थ या गृहस्थ जाना चाहिए। इस प्रकार से कई बार वो निर्णायक आश्रम नहीं होता, तो उसके वजह से हम निर्णय लेने में हिचकिचाहट करते हैं। और ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से उदाहरण जिसमें हम ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। इंग्लिश में से कहते हैं इनडिसाइसिवनेस, कि जब हम इनडिसाइसिव रहते हैं तो वो भी एक अनर्थ है हमारी भक्ति के अंदर, और वो व्यूढ़ विकल्प, हर समय इस विकल्प में हम रहते हैं कि करूं या ना करूं, निर्णय लेने में, यहां जाऊं या ना जाऊं, ये खाऊं या ना खाऊं, प्रसाद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अच्छा है प्रसाद है, अब भूख नहीं लेकिन है, लेकिन प्रसाद है और अच्छा भी है तो खाना चाहिए, साधारण से उदाहरण है ये सब, परंतु इसके अंदर और भी श्रेणियां हैं जिसके अंदर हम निर्णायक नहीं रहते हमारी भक्ति के अंदर, तो वो एक अनर्थ है। और प्रगति की इच्छा होती है, परंतु उस प्रगति की इच्छा के साथ और अन्य बहुत सी भौतिक इच्छाएं भी रहती है, तो बहुत सी भौतिक इच्छाएं और प्रगति की इच्छा, इनके मिश्रण के वजह से हम हर समय इस व्यूढ़ विकल्प स्थिति में रहते हैं। तो ये संशयात्मक भक्ति का एक और अंग है, संशय के कारण दृढ़ विश्वास में कमी, और उसके वजह से हमारे भक्ति के कार्यों में कमतरता आती है। कि जैसे कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि ये जो संशय मेरे अंदर पैदा हुआ है, इस संशय का आप नाश कीजिए हे मधुसूदन, और वो भगवान को मधुसूदन उल्लेख कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक से कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संकेत दे रहे हैं कि जैसे आपने मधु ये राक्षस का वध किया सूदन, इसलिए आपको नाम मिला मधुसूदन, उसी प्रकार से ये जो संशय रूपी राक्षस मेरे अंदर पैदा हुआ है कि क्या मैं युद्ध करूं या न करूं, ये संशय, ये एक प्रकार का व्यूढ़ विकल्प अर्जुन के अंदर भगवद गीता के प्रारंभ में वो पैदा हुआ था, तो वो उसे एक राक्षस कह रहे थे कि इसका आप संहार कीजिए, ये संशय रूपी जो राक्षस है इसका आप संहार कीजिए। तो हमारे कार्यों में जैसे अर्जुन संशय के वजह से वो अपना गांडीव नहीं उठा पा रहा, देखिए वही अर्जुन जिसने अकेले ये पूरी कौरव सेना को हरा दिया था, अकेले वो अर्जुन अब अपना गांडीव नहीं उठा पा रहा, अपने अपने भक्ति के कार्यों में नहीं लग पा रहा। तो हमारे अंदर भी ये देखा जाता है कि जब संशय पैदा हो जाता है कि कई बार प्रचार करने जाते हैं हम और कोई व्यक्ति हमारे अंदर कोई संशय का वायरस डाल देता है, पूछता है कि कितने समय से भक्ति कर रहे हो, 10 साल हो गए, अच्छा 10 साल देखा है भगवान को, देखा कृष्ण को, देखा बांसुरी बजाते, सुनी कभी बांसुरी सुनी होंगी, और कई बार कोई ऐसे साइंटिफिक माइंडेड लोग रहते हैं वो अपना साइंस का कुछ नया निकाल कर हमारे अंदर संशय पैदा कर देते हैं कि देखो अब साइंस ने क्लोनिंग करके दूसरा एक जीव पैदा कर दिया, तुम्हारे पुस्तकों में लिखा है जीव पैदा नहीं कर सकते, हमने कर दिया देखो। तो कई बार वो अंदर जब वो वायरस डाल देते हैं संशय का, तो धीरे धीरे वो हम उसके विषय में सोचते रहते हैं क्या सही में श्रील प्रभुपाद सब जो कहते हैं वो है कि क्या, कुछ पता नहीं है, अभी तो कर रहे हैं तब से भक्ति। तो फिर संशय के दो कारण होते हैं, एक कारण है जब इंद्रिय भोग फिर से प्रलोभित करता है हमें, तो हमें भक्ति में संशय होता है कि मुझे भक्ति में इतना आनंद स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता जितना इंद्रिय भोग में स्वाभाविक रूप से मिलता है, तो फिर हम संशय करने लगते हैं कि क्या भक्ति स्वाभाविक ही है, परंतु इंद्रिय भोग स्वाभाविक ही लगती है, तो फिर उसके अंदर हमारा संशय होता है इंद्रिय भोग के प्रति जब आकर्षण होता है उसके प्रति। और दूसरा है कि जब जो दर्शन शास्त्र है हमारा कृष्ण भावना का जो दर्शन फिलॉसफी जो है, उस फिलॉसफी में हमें यदि कुछ समझ में ना आए, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं जो हमें दार्शनिक रूप से हम नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अब अपने ही सुंदरता को कैसे नहीं पहचान पाते और कैसे वो ये नहीं जान पाते कि राधा रानी के अंदर कितना प्रेम है मेरे प्रति, उसे आस्वादन करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कई बार जब हम अपनी बुद्धि से या दर्शन शास्त्र से इसे समझ नहीं पाते तो कई बार थोड़ा थोड़ा संशय वो पनपने लगता है हमारे हृदय के अंदर, और फिर वो संशय कई बार इतना बड़ा हो जाता है, वो एक बीज और बीज से एक पौधा और पौधे से एक वृक्ष का एक रूप ले लेता है हमारे अंदर। तो फिलॉसफी में जब संशय पैदा होता है तो वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यदि हमें दार्शनिक रूप से हमारे अंदर जब संशय आता है तो हमारे अंदर फिर भगवान का जो अस्तित्व है उनके प्रति श्रद्धा उठ जाती है। परंतु जब संशय आता है इंद्रिय भोग के कारण तो वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि जो इंद्रिय भोग के कारण जो संशय उत्पन्न हुआ है वो धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में और संग के प्रभाव से वो दूर हो सकता है। और इंद्रिय भोग इस संसार का तो अपने आप दिखा देता है कि वो कितना सुख आपको देगा, अपने आप इंद्रिय भोग बता देता है, बस इतना लेवल है उसका, उसके आगे वो जा नहीं सकता और उसमें भी इतने सारे दुख। तो उनके वजह से फिर से जैसे अजामिल की कथा, पता लग गया उसको, फिर से आ गए भक्ति में। तो इसलिए जब फिलोसॉफिकल डाउट्स आते हैं तो उसके विषय में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक चीज हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे ही हम भक्ति में लगते हैं तो भक्ति में आते ही बहुत सी चीजें हमें तुरंत समझ में आ जाती है। आपको यदि मैं पूछूं कि आप जब भक्ति में लगे तो कौन सी ऐसी पहली चीज थी जो बिना ज्यादा बताए आप समझ गए, भक्ति के जो अलग अलग मुद्दे होते हैं सिद्धांत के, कौन सा पहला सिद्धांत था जिसके विषय में आपको कोई संशय नहीं रहा, तुरंत आप समझ गए हाँ ये तो सही बता रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो बताइए कि कौन सा ऐसा सिद्धांत जो आते ही आप तुरंत समझ गए, भगवान है, हरिनाम बहुत मधुर है और भौतिक संसार दुखालय, ये मुझे सबसे पहले जब सबसे पहले मैंने सुना प्रवचन में ये सबसे सही बात कही जो किसी ने आज तक मुझे नहीं बताई। अनुभव मैं कर रहा हूं, सभी दुख में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आकर दूसरे को नहीं बोलता दुखालय है संसार, सभी बोलते हैं नहीं नहीं ट्राई करो ट्राई करो, कहीं तो मिल जाएगा कोई तो सुख, यहां वहां ढूंढते रहो टॉर्च लेके कुछ भी देखे कहीं तो मिलेगा कुछ। तो जब मैंने सबसे पहले सुना ये भौतिक संसार दुखालय हाँ, तुरंत मुझे समझ में आ गया कि ये लोग जो कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं। और कोई चीज हाँ, तो जो भी सुख है होगा कोई सुख, परंतु वो क्षणिक है, आद्यंतवंत कौन्तेय, उसका आदि है और उसका अंत है। और कौन से मुद्दे और कौन से सिद्धांत जो तुरंत आपको बोलते ना क्लिक हो जाता है हाँ ये जो बोल रहे हैं ठीक है। हाँ मैं ये शरीर नहीं मैं ये आत्मा हूं, कि तुरंत समझ में आ जाता है कि इसके विषय में हम ज्यादा कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते, कुछ हद तक वाद विवाद होता है परंतु उसके बाद ज्यादा वाद विवाद नहीं कर सकते कि हम क्या हैं। और एक चीज, मृत्यु निश्चित है, कोई पूछता नहीं इसके बारे में कि आप कैसे बोल सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है, मेरे विषय में हो सकता है कि मृत्यु ना आए, कोई नहीं ज्यादातर नहीं बोलते इसका कोई। तो ये एक जो मुद्दा ये जो सिद्धांत है तुरंत हमें पड़ जाता है समझ में आ जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो बहुत से सिद्धांत तुरंत समझ में आ जाते हैं, हमें ज्यादा विस्तार नहीं करना पड़ता उन्हें समझाने के लिए। और बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमें कुछ समय बाद समझ में आते हैं भक्ति करने के, वो कौन से मुद्दे हैं जो तुरंत समझ में नहीं आते, परंतु कुछ समय बाद वो मुद्दे हमें धीरे धीरे अनफोल्ड वो होते हैं, धीरे धीरे वो हमें समझ में आते हैं। भक्ति इतनी सरल नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, अभी सेमिनार की बात तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद को तमाल कृष्ण महाराज, इन्होंने एक बार बोला, वो बोले कि श्रील प्रभुपाद यू टोल्ड दैट भक्ति इज वेरी सिंपल। तो प्रभुपाद बोले, आई टोल्ड भक्ति इज वेरी सिंपल, आई नेवर सेड भक्ति इज इजी। समथिंग माइट बी सिंपल, माइट नॉट बी इजी, एंड समथिंग माइट बी डिफिकल्ट, माइट नॉट बी सिंपल। तो फिर इसमें हमें समझ में आता है कि भक्ति इतनी ज्यादा सरल नहीं है। और क्या समझ में आया कई भक्तों को? अटेंटिव चैंटिंग इतना आसान नहीं है कि जब पर भगवान के हरि नाम में ध्यान दें और ठीक से सुने। ये कुछ महीनों वर्षों के बाद समझ में आता है, जप में जगे रहना, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। अटेंटिव तो दूर की बात है, जप में जगे रहना ये समझ में आता है। और कई बार जो नए नए भक्त आते हैं, क्योंकि वो अब नया नया उत्साह है, नयापन है, विस्फोट अब बीच की स्थिति में है, तो नींद नहीं आती उन्हें। फिर पूरा विस्फोट जब हो जाता है, फुग्गा सब चला गया उसकी हवा, फिर बाद में धीरे धीरे उत्साह चला गया, तो फिर श्रवण और कीर्तन में नींद आना शुरू। और फिर पता लगता है कि श्रवण कीर्तन ये जो बता रहे हैं आचार्य है, ये वास्तविकता है। तब समझ में आता है कि हाँ, इतना मुश्किल है कि श्रवण और कीर्तन में ध्यान पूर्वक जप करना। जब पहली बार दस नाम अपराध हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें से मैं तो एक भी नहीं कर रहा। और फिर समझ में आता है कि जो मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस जिसे कहते हैं इनअटेंटिव चैंटिंग, वहां से ही हमारी शुरुआत हो रही, तो बाकी तो भूल ही जाओ। तो हाँ, जो इनअटेंशन है, जो ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन है, वो नहीं हो पाता, वो धीरे धीरे हमें कुछ वर्षों बाद समझ में आता है। और कौन से सिद्धांत समझ में आते हैं कुछ वर्षों बाद? हाँ, मैं दासों के दासों का दास। पहली बार तो लगता है कि भाई सभी लोग मेरे इर्द गिर्द ही घूमते हैं जब मैं आता हूँ मंदिर में। अरे, मुझे प्रसाद सबसे पहले देते हैं, मुझे कुछ आसन देते हैं, और सभी लोग आकर, और कैसे हो प्रभु जी, बड़े दिनों बाद आए, और अगली बार आ रहे हैं कि नहीं, सभी लोग मुझसे बात करते हैं। उसके बाद फिर जब एक दो साल बीत गए, फिर जब मैं आता हूँ तो सीधा हाथ में, प्रभु जी थोड़ा आएंगे किचन में सब्जी कटिंग के लिए, और फिर ये थोड़ा सर्विंग करेंगे, बाल्टी पकड़ो थोड़ा, इधर बहुत हो गया, प्लेट पकड़ लिया। अब पहले प्लेट पकड़ाते थे, अब बाल्टी पकड़ाते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो जो हमारा दास अनुदास अनुदास, ये जो हमें बनना है, ये धीरे धीरे फिर समझ में आता है कि कितना मुश्किल है प्रवचन में बोलने के लिए। हाँ, हमें दास अनुदास अनुदास कितनी बार, जितनी बार हो सके उतना दास लगाना चाहिए, परंतु जब उसको पालन करना पड़ता है हमारे जीवन में, समझ में आता है कितना मुश्किल है। और हाँ, नम्रता तृणादपि सुनिचेन और तरोरपि सहिष्णुना, ये जो है, ये श्लोक रोज हम एकदम ट्यून में गाते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नम्रता ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है इस भौतिक संसार में। तो इसके विषय में समझ में आता है धीरे धीरे। और क्या, कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, बहुत अनर्थ है, सेवा भाव नहीं है कि है, कि सेवा भाव है कि नहीं, करना चाहिए, कि सेवा भाव होना चाहिए हमारे मतलब नहीं है। तो सेवा भाव होना चाहिए, ये धीरे धीरे समझ में आता है जब हम भक्ति में लगते हैं, कुछ वर्ष के बाद समझ में आता है। भक्ति हम अकेले नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि कुछ वर्ष बाद हमें समझ में आता है कि हमें भक्तों की आवश्यकता है, ये हमारे सहारे हैं, इनके बगैर हम भक्ति में खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनसे देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये भक्ति करने से हमें इनका अनुभव मिलता है। कोई हमें बोल दे तो बोलने से उस समय समझ में नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे जब हम भक्ति में लगते हैं तब समझ में आता है कि भक्ति के गुण क्या हैं और हमारे अनर्थों के गुण क्या हैं या हमारे दुर्गुण क्या हैं। ये धीरे धीरे हमें कुछ समय बाद समझ में आता है। और फिर ये भी बताया गया है कि भक्ति के बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें कभी समझ में नहीं आएंगे। Some things you will understand immediately when we come to devotional service. Some things you will understand after some time of practicing devotional service. And there are so many things which we will never conceive, which we will never understand. Like, how many qualities Krishna has? Hum likh sakte hain 64. 64 क्वालिटीज लिख दिया और भक्ति शास्त्र में हमने वो आंसर लिख के पास भी हो गए, परंतु क्या भगवान के केवल उतने 64 गुण हैं? तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। और जैसे कि राधा रानी का महाभाव कृष्ण के प्रति, ये कभी हमें समय में नहीं आएगा। और भगवान श्री कृष्ण वो हमें इस भौतिक संसार में क्यों रखे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके स्रोत कौन है, ये सारी चीजें, ये बहुत सी चीजें हैं जो हर समय इनकंसीवेबल रहेंगी, जो कि हमारी बुद्धि के हर समय परे रहेंगे। तो इसे समझ के हमें भक्ति में आगे बढ़ना है कि बहुत सी चीजें तुरंत हम समझ जाएंगे, बहुत सी चीजें कुछ समय पश्चात, और बहुत सी चीजें कभी नहीं। जब ये हम समझ लिए तो फिर धीरे धीरे हमारे कार्यों में कमतरता नहीं होगी, वो संशयात्मक भक्ति का जो मोड है उससे हम बाहर निकलेंगे। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि Like what? नहीं नहीं, कार्यों में कमतरता, जैसे अर्जुन का उदाहरण, लाइक आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन। अर्जुन वॉज नॉट इन अ प्रॉब्लम ऑफ यू नो नॉट गेटिंग टाइम टू फाइट द वॉर। व्हेन यू आर सेइंग प्रायोरिटी, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हियरिन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ही इज टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड प्रॉब्लम। So when you are not able to do some service because of maybe your health issues, maybe because of some family issues, maybe because you don't have enough time, all these are management problems. Our acharyas, they don't talk about management problems so much. They go into the attitude problem. From there, all the problems stem out. So Arjun, aisa nahi tha ki Arjun bol rahe hain कृष्ण को कि समय नहीं है, कहा इतना बड़ा युद्ध, बहुत कुछ करना है। ही नेवर टोल्ड दैट आई हैव प्रॉब्लम ऑफ नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज इन टर्म्स ऑफ टाइम। अर्जुन प्रॉब्लम वॉज एटीट्यूड प्रॉब्लम, तो इसलिए अर्जुन गांडीव नहीं उठा पा रहा। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन हियर। नहीं, कई बातें, कई सिद्धांत भक्ति के वो हमें कभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के स्तर के सिद्धांत हैं। तो वो क्योंकि हम लिमिटेड हैं और भगवान कौन है, अनलिमिटेड है। तो यदि हम भगवान जो अनलिमिटेड हैं उनके विषय में सब कुछ समझ लें तो हमें और उनमें अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं रह गया। इफ द फाइनाइट कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द इनफाइनाइट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट। तो इसलिए भक्ति के बहुत से सिद्धांत वो हम कोई भी स्थिति में पूर्ण प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, ये समझ लेना है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब इतनी सारी पुस्तकें लिखी तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद इफ टू लव कृष्णा एंड टू चैंट हरे कृष्णा दैट इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ, देन व्हाई यू हैव रिटन सो मेनी बुक्स। Prabhupada said, I have written all these books for you to understand that you can never understand how you can fully love and serve Krishna. And then Prabhupada asked, did you understand? So, agla, philosophy. दर्शन शास्त्र बोलते हैं फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल डाउट्स जो होते हैं ना, दार्शनिक संशय, फिलोसॉफिकल डाउट्स। और कोई प्रश्न? निर्णय लेने में हिचकिचाहट, प्रश्न पूछा गया है कि अज्ञान के कारण भी हो सकता है, अज्ञान के कारण हिचकिचाहट नहीं होगी। जैसे कि आपको यदि नासिक रोड जाना है, आपको रास्ता नहीं मालूम, तो आप अज्ञान में हैं उस रास्ते के, तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, नासिक रोड जाऊं या ना जाऊं ऐसे किसी को नहीं पूछेंगे आप। आप क्या पूछेंगे, नासिक रोड का रास्ता कौन सा है, वो निर्णायक आपने प्रश्न पूछा है कि नहीं। परंतु यदि आप नासिक रोड के रास्ते पर हो और वो रास्ता आपको गलत रास्ता किसी ने बता दिया और उसमें फिर आपको समझ में आया कि रास्ता गलत है, तो समझने से पहले यदि आपको किसी ने बताया नहीं कि रास्ता कहां जा रहा है तो उसमें हिचकिचाहट होगी आपको, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उसे हम अज्ञान नहीं कहते, उसे हम कहते हैं कि हमारी तरफ से हमने पूर्ण प्रयास नहीं किया। जैसे कि कभी यदि कोई व्यक्ति पूर्ण प्रयास नहीं करेगा जानने का कि मैं कैसे नासिक रोड पहुंचूं, तो जब जानने का पूर्ण प्रयास नहीं करेगा तो वो अज्ञान नहीं, वो उसकी निर्णायक प्रॉब्लम है, हिचकिचाहट होने की प्रॉब्लम। जैसे कि अज्ञान हम उसे कहते हैं कि जैसा कोई बालक पैदा हुआ है और उसे पता नहीं कि आग में हाथ डालने से आग जलता है, तो वो उसका अज्ञान है, ठीक है। और जब वो उसमें हाथ डालता है, उसका हाथ जल जाता है, तो फिर उसका पूरा अज्ञान दूर हो जाता है। अब उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है कि ये जो वस्तु है जलाती है मुझे, तो अब वो अज्ञान जब पूर्ण प्रकार से दूर हो गया तो फिर उसको हिचकिचाहट नहीं होगी, आगे चल के कभी हिचकिचाहट नहीं होगी, हाथ डालू या न डालू, हाथ डालू या न डालू। तो जब अब अज्ञान कह रहे हैं तो अज्ञान का जो पूर्ण स्तर है वो दूर किया जा सकता है, परंतु ये जो निर्णायक किसी का प्रॉब्लम होता है ये दूर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है कि नहीं। तो इसके विषय में चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में, और ये भी आपकी बात सही है कि अज्ञान की वजह से कोई प्रॉब्लम होगा किसी को कि वो जानता नहीं कि मुझे पांडव निर्जला एकादशी करने से क्या मिलेगा, परंतु वो न जानने के वजह से वो एक अनर्थ नहीं कहलाया जाता, उस अज्ञान को अनर्थ का ज्ञान नहीं कहलाया जा सकता। यह निर्णायक प्रॉब्लम उसका होता है जब वो जानता है, जब वो जानता है कि ये करने से मुझे ये लाभ मिलेगा और ये करने से मुझे ये दुष्परिणाम मिलेगा, और उसके बीच में जब वो अटक जाता है कि इसे करूं या इसे करूं, इसे करूं या इसे करूं, तो उसको वो अनर्थ कहते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ये समझा? फिर से हम चर्चा करेंगे आगे। विषय संग्रह, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वजह से हमारे अंदर मानसिक तनाव होता है। यही मैं बता रहा था कि जानते हैं हम बुद्धि से कि इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए, परंतु जब इच्छा जागृत होती है तो उसके अंदर तनाव पैदा होता है। मन और बुद्धि इनके बीच में जो तनाव पैदा होता है वो ये विषय संग्रह की शुरुआत है। संशयों का समाधान होता है किंतु ज्ञान के आधार पर कार्यों में कमतरता या कमी दिखने को मिलती है कि हमारे संशयों का समाधान हो गया है। हाँ, भगवान है, कृष्ण है, उनका गोलोक धाम है, सब कुछ जानते हैं, हरिधाम एकमात्र उपाय है, परंतु ज्ञान के आधार पर हम कार्यों में कमी महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल यदि हम ज्ञान को ही आधार बनाकर भक्ति करें तो वो जो हायर टेस्ट परम दृष्टवा है वो नहीं मिल पाता हमें। इसलिए केवल ज्ञान के स्तर पर भक्ति हो नहीं पाएगी कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप से। तो इसलिए हमें हमारी भक्ति को ज्ञान से ऊपर, हमारा जो अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम है उसे जागृत करके उस भाव पर लाना है। और यहां पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारे अंदर इस स्थिति में संशय से ज्यादा शक्तिशाली हमारा विश्वास होता है, किंतु हमारे जो इंद्रिय आकर्षण है वो हमारे दृढ़ता से ज्यादा शक्तिशाली कई बार बन जाता है। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ, क्या समझ में आया आपको? तो विश्वास और दृढ़ता ये दो अलग अलग भावनाएं हैं हमारे अंदर। तो विश्वास होता है कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, परंतु उनके लिए इंद्रिय संयम, इसके अंदर दृढ़ता नहीं आ सकती या नहीं आ पाती। तो ये विषय संग्रह में देखा जाता है। जप में विश्वास किंतु शिकार बनते हैं भौतिक वासनाओं का। विश्वास है भक्ति के कार्यों में, परंतु हम शिकार बन जाते हैं विषय वासनाओं। जैसे कि उदाहरण है अजामिल। अजामिल सब कुछ जानता था, पूरे शास्त्र का अध्ययन उसने किया था, वो जानता था कि ये जो कुछ मेरे जीवन में अब हो रहा है, जो कुछ मैंने देखा उसके वजह से मेरा मन भ्रमित हो रहा है, और सारे शास्त्रों में जितने सारे श्लोक उससे संबंधित थे, कंठस्थ थे अजामिल को, और वो सारे श्लोक उससे संबंधित वो उच्चारण उसका कर रहा था, परंतु अंदर से शुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई थी, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विश्वामित्र मुनि इनका भी उदाहरण है। परंतु हरिदास ठाकुर, देखिए हरिदास ठाकुर का उदाहरण और विश्वामित्र मुनि का उदाहरण, इनकी तुलना यदि हम करें तो विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर, इन दोनों में बहुत अंतर था। कि विश्वामित्र मुनि वो कौन से युग के, सत्युग के, और वो भी 60,000 वर्ष उन्होंने वो तपस्या में लगाए हुए थे, और वो भी क्षत्रिय और ब्राह्मण की ब्राह्मण का सारा जीवन जीते हुए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन थे वो। और फिर ऐसा नहीं कि मेनका ने आकर विश्वामित्र मुनि को बहुत ज्यादा कुछ किया प्रलोभन करने के लिए। विश्वामित्र मुनि ने आंखें भी नहीं खोली थी, केवल कानों से सुना, जो नूपुर थे मेनका के, केवल सुने वो नूपुर की आवाज। और यहां पर हरिदास ठाकुर के सामने स्वयं माया देवी, व्यक्तिगत जो मूर्तिमान माया देवी है, वो प्रकट हुई, और वो भी केवल कुछ समय के लिए नहीं, 3 दिन 3 रात वहां पर आई वो। तो यहां पर हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर वो माया देवी के प्रभाव से कैसे ऊपर उठ सके, या पहले से ही वो ऊपर थे, क्योंकि उनके अंदर केवल विश्वास ही नहीं था भगवान के भक्ति में, बल्कि दृढ़ता। तो विश्वास के साथ दृढ़ता भी होनी चाहिए। जब ये दोनों का मेल होता है, तब जाकर हमारी भक्ति में हम प्रगति करते हैं। और विषय संग्रह के विषय में कहा गया है कि पथभ्रष्ट होने पर भी बुद्धि को पता होता है कि हमें उठकर आगे बढ़ना है। कि पथभ्रष्ट हो गया है, वो जानता है, बुद्धि से पता लगा लिया है कि अब मैं माया में गिर गया हूं, या माया की तरफ झुकाव हो रहा है, बुद्धि से समझ गया। परंतु वो बुद्धि कहती है कि आगे बढ़ो और वहां से बाहर निकलो, और माया से निकलकर भक्ति में आ जाओ। और कई बार ये जो भक्त इस दुविधा में रहता है, तो वो खुद को उठाते रहता है, बार बार उठाकर भक्ति में डालता है, परंतु फिर भी धीरे धीरे वापस से माया की तरफ वो चुंबक जैसे आकर्षित कर लेता है लोहे को। तो धीरे धीरे, हालांकि प्रहलाद महाराज ने उल्टा उदाहरण दिया कि हे कृष्ण, आप उस चुंबक के समान हो और मैं उस लोहे के समान हूं कि आपके प्रति मैं आकर्षित हर समय रहता हूं। तो हम भी वही उदाहरण यूज करते हैं, प्रहलाद महाराज का उदाहरण, कि हे माया देवी, आप उस चुंबक के समान हो और मैं उस लोहे के समान हूं, कि हम दोनों कभी अलग ही नहीं हुए। मुझे भ्रम था कि मैं भक्ति में लगा हूं। हमारी स्थिति वैसी रहती है। तो इसमें कई बार जब विषय संग्रह में जो साधक है, वो कई बार अपने आप को उठाता है, फिर से भक्ति में डालता है, फिर देखता है कि एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, फिर से सरक गया वहां पर, फिर से अपने आप को उठाता है, फिर से। तो ये उसका कार्यक्रम चलता रहता है बहुत बार अपनी साधना भक्ति में, उठाना फिर गिरना, फिर उठाना फिर गिरना, फिर उठाना फिर गिरना। परंतु बुद्धि से वो जानता है कि वो पथभ्रष्ट हो रहा है, परंतु उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा कि एक बार छिंदी काट दो उसको, ये जो आसक्ति है इसे उस भक्ति के ज्ञानमय तलवार से काट कर बस खत्म कर दो। वो तलवार उठाने की दृढ़ता नहीं आती। तलवार दिखती है और पता है ये तलवार मेरी आसक्ति को काट सकती है, परंतु उसे उठाने की शक्ति नहीं। और कई बार हम भक्तों के संग में आकर शक्ति भी अर्जित कर लेते हैं उस तलवार को उठाने की, परंतु फिर जब माया फिर से प्रलोभित करती है, तो हम माया को दे दे, आप लो तलवार, और जो आपको करना है आप ही करो, आप भी भगवान की ही सेविका हैं और ये सब। तो इस विषय संग्रह में कई बार साधक अपने आप को पाता है। नियमाक्षमा की अवास्तविक प्रतिज्ञाएं, अनरियलिस्टिक वाउज, यदि आपको ये ज्यादा टेक्निकल लग रहा है तो, कि कई बार हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं परंतु वो रियलिस्टिक प्रतिज्ञाएं नहीं होती या वास्तविक नहीं होती। भक्तिमय कार्यों को बढ़ाने की प्रतिज्ञाएं, साधना सेवा सदाचार के बारे में प्रतिज्ञाएं, सुधार न कर पाने के कारण उदासीनता फिराती है। तो कई बार जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है कि हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि अब से हर एकादशी निर्जला एकादशी, हर एकादशी 64 माला, हर एकादशी केवल कोई काम नहीं करना, केवल श्रवण कीर्तन ये वो। तो हम ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो कई बार हमें बताया जाता है कि प्रतिज्ञा, हमें उस प्रकार की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यदि हम ऐसी प्रतिज्ञा ले लें जिसमें हम सक्षम नहीं वो करने में, तो वो पूरी प्रतिज्ञा पालन न करने की वजह से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। हमें लगता है कि ये हरिनाम में कोई दम नहीं, हमें लगता है भक्ति में कोई दम नहीं, दम हम में नहीं है। तो इसमें बहुत सावधान होना चाहिए कि अवास्तविक प्रतिज्ञाएं हमें नहीं लेनी चाहिए भक्ति में, अनरियलिस्टिक वाउस नहीं होना चाहिए कि मैं यात्रा में गया हूं और यात्रा में मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, बस केवल फलाहारी बाबा वही रहकर। तो फिर यात्रा में कई बार चार चार घंटा यात्रा हो जाती है, सफर हो जाता है, प्रवचन कीर्तन, और उसके पश्चात फिर एक दो दिन बाद समझ में आता है कि हमारा मीटर किधर गया। फिर उसके बाद में सब कुछ छोड़ के हम दिन भर खाते ही रहेंगे, फिर खाते ही रहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा, और उसका कारण क्या है कि जब सुधार नहीं दिखता हमें, क्योंकि केवल प्रतिज्ञा या वाउंड लेने से भक्ति में सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, भगवान हमारी नम्रता से प्रसन्न होते। कि जब हम हमारे अंदर नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, तब जाकर भगवान, चाहे हम बहुत बड़े कोई पहुंचे हुए साधु या भक्त भी ना हो, परंतु यदि हमारा अभिप्राय साफ है, नम्रता है, तो उसमें हमें फिर प्रगति मिलती है। अच्छे संग को सम्मानित न करने के कारण भक्ति में इच्छाओं में कमी महसूस होती है। कि जब हम भक्तों का जो संग है उसका सम्मान जब हम नहीं करते, और ये कई बार हम इस समस्या में अपने आप को पाते हैं कि भक्तों का जो संग है धीरे धीरे हम उसे जो कहते हैं ना टेक इट फॉर ग्रांटेड, वैसे बना लेते हैं भक्तों के संग। हाँ, वही मंदिर और वही कार्यक्रम हर संडे को, तो वही भक्त आते हैं, वही वही उनका नाम है, वही गाते हैं, वही मेलोडी, वही उनके उदाहरण होते हैं सब, क्या इसमें विशेष क्या है। तो जब हमारे अंदर ये भक्तों के संग के प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान जब धीरे धीरे जाता रहता है, तो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए बीमारी बढ़ रही है, या बीमारी पकड़ ली, या वायरस पकड़ लिया। तो ये इसके अंदर है नियमाक्षम। और छठा जो प्रकार है तरंग रंगिनी, नाम बहुत अच्छा है ना, केवल यदि उसका अर्थ नहीं दिया होता तरंग रंगिनी, हो सकता है कि हम किसी तरंगों में या रंगीली भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लगेगा। तो भक्ति आकर्षक है, इसलिए भक्त भी आकर्षक बनता है। बिकॉज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, देयरफॉर भक्ति इज ऑल अट्रैक्टिव, देयरफॉर भक्त ऑल्सो गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू बिकम ऑल अट्रैक्टिव। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हम पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, इसके बवंडर में फंसने लगते हैं। कीर्ति, पूजा और प्रसिद्धि मिलती है। जैसे कि हम बता रहे थे कि पहले कभी हमें किसी ने दंडवत नहीं किया, तो हमें लगता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति संसार में है जो पूरा नीचे झुक कर मुझे दंडवत भी करेगा एक दिन। हमें भी करना पड़ता है ना, लेकिन वो भूल जाते हैं हम। तो बहुत से ऐसे बाहरी चीजें हैं भक्ति की जो हमें ये प्रकार के बाउंडर में डाल देती है कि ये हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है कुछ भी है। जैसे कि मुझे एक घटना याद है कि हम लोग बंबई में एक हिंदी गीता कोर्स कर रहे थे बोरीवली में, तो हमारे पूना के एक ब्रह्मचारी मुंबई आए थे गीता कोर्स वगैरह सीखने के लिए कि हम लोग कैसे गीता कोर्स करते हैं। तो वो मेरे साथ रोज वहां आया करते थे उस गीता कोर्स में। तो वहां पर उन्होंने देखा कि पहली बार देखा कि वो माला पहनाई जाती है और फिर माला पहनाने के बाद फिर वो दंडवत होता है और फिर वो सभी लोग आकर पैर छूते हैं और एकदम नम्रता से। तो उन्होंने हम लोग पहले दिन जब गीता कोर्स हुआ पहले दिन बाद जब हम जा रहे थे ट्रेन में सब कुछ हो गया उसके बाद में जब लोकल ट्रेन में रात के 10 बजे बैठे थे हम तो ये भक्त मुझे पूछते हैं मुझे इतना सब कुछ पूजा वगैरह लाभ प्रतिष्ठा होती है तो कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो हम मैं बता रहा था कि ये सारी चीजें हमारी नहीं है ये सारी चीजें हमको परंपरा से मिली है और ये सब हमको उनको अर्पित करनी है। यदि हमने सोचा है कि ये माला मेरे को पहना रहे हैं हाँ तो कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फिर हम लोग वो इंग्लिश में पूछ रहे थे साउथ इंडियन डिवोटी थे इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैं इंग्लिश में बोल रहा। तो रात के 11 बजे एक व्यक्ति दूसरे बेंच पे वो सीट होता है लोकल ट्रेन का उस पर बैठा था तो उसने जब सुना हम लोग इंग्लिश में बात करें तो सामने आके बैठ गया और सामने आके ऐसे मुंह आगे करके सुन रहा है। तो अजीब लग रहा है दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कोई अपना मुंह बीच में डाल के सुन रहा है। तो फिर अचानक वो व्यक्ति उस सीट पे खड़ा हो गया खड़ा होके चिल्लाने लगा ये देखो गांधी के कपड़े पहने और बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा बता निकालो इनको इस देश से बाहर फेंक दो इनको उन अंग्रेजों के देश में जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। तो मैंने अब इन भक्त को पूछा ये हार कैसा लगा अभी तो हमने कहा प्रचार में कई बार फूलों का हार मिलता है गालियों का भी मिलता है तो दोनों के लिए रेडी होना चाहिए। तो दोनों में यदि हम आसक्त हो जाए तो फिर दोनों में प्रॉब्लम होता है कि जब हम समझे कि ये जो प्रतिष्ठा जो मान सम्मान जो मिल रहा है ये मेरे वजह से मिल रहा है क्योंकि मैंने ऐसा प्रवचन दिया मैंने ऐसा कीर्तन किया मैं इतनी भक्ति में इतने सालों से हूं मेरी हरिनाम ब्राह्मण दीक्षा ये सब कुछ हो चुके इसलिए मैं तो ये सारा ये सब अलग अलग तरंगों में हम भक्ति के तैरते रहते हैं परंतु डूबना है फिर इसके अंदर बहुत समय तक नहीं तैरेंगे। भक्ति देवी को स्वयं की प्रशंसा के लिए हम प्रयोग में लाते हैं कि हम भक्ति देवी को एक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं हमारी प्रशंसा हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ इसके लिए और इसके वजह से हम भक्ति की कई बाधाओं से गुजरते हैं या भक्ति हमारी कई बाधाओं से गुजरती है इसके कारण। तो इसलिए इसके विषय में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और अब आगे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमारे अनर्थों के प्रकार कौन कौन से हैं जिसकी चर्चा हम आज नहीं करने वाले क्योंकि ये अनर्थों के प्रकार चार हैं और इनके विषय में भी बहुत विस्तार से चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं तो क्योंकि हमें भी विस्तार से इसको बताना है तो ये कौन से चार प्रकार के अनर्थ हैं हमारी भक्ति के इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। तो आज जो हमने चर्चा की वो यदि आपको ध्यान नहीं है तो हम इसको बता देंगे कि कौन से प्रकार की अनिष्टिता भक्ति है कितने प्रकार की छह प्रकार की। सबसे पहली उत्साहमयी दूसरी अनिष्टिता भक्ति घन तरला तीसरी व्यूढ़ विकल्प चौथी विषय संग्रह पांचवी नियमाक्षमा और तरंग रंगिनी। तो हम यहां पर एक सैंपल देख रहे हैं कि चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्य वो कितने अंदर गए हैं, सूक्ष्म तरीके से हमें बता रहे हैं कि हमारी बीमारी कहां तक फैली हुई है। और इसलिए सबसे पहले जब हमें समझ में आएगा कि हमारी बीमारी कहां तक फैली हुई है, कितनी सूक्ष्मता से अंदर फैली हुई है, तब धीरे धीरे हम हमारी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे इन बीमारियों को जड़ से बाहर निकाल कर फेंकने में। तो यदि आप लोगों को उसमें उत्साह आ रहा है तो आप आते रहिए हर बुधवार को। ये माधुरी कादंबनी बहुत ही गहरा एक ग्रंथ है जो हमें हमारी भक्ति में और हमें गहरा ले जाकर हमें बताते हैं ये ग्रंथ कि हम हमारी भक्ति के कौन से स्तर पर हैं, या जिसे कहते हैं कितने पानी में हैं, या पानी में हैं कि नहीं कि अभी तक पानी के बाहर तट पे ही खड़े हैं। तो ये ग्रंथ हमें सब कुछ पर्दाफाश कर हमें बता रहा है। किसी का कोई अंतिम प्रश्न है? भक्तिमय जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। अजामिल को पुस्तकीय ज्ञान था, परंतु जब हम हरिदास ठाकुर की तुलना करें तो अजामिल ने तो केवल किसी स्त्री पुरुष को देखा, यहां पे तो ये स्वयं अपने आप को वो प्रस्तुत कर रही थी माया देवी। तो यहां पर जो हरिदास ठाकुर का जो भक्तिमय ज्ञान था वो उन्होंने अपने साक्षात्कारिक भक्तिमय कार्यों में लाया था, और उसके वजह से उनका जो भगवान श्री कृष्ण या हरिनाम या भक्ति से जो आदान प्रदान हो रहा था वो ज्ञान के बहुत परे था। इसलिए कहते हैं कि जस्ट लाइक इन लस्ट देयर इज नो लॉजिक, यू कैंट पुट एनी लॉजिक व्हाई somebody is in lust. Similarly, there is no logic for love also. Because there is no logic for love, therefore you find that people, they go beyond their logic and reasoning when it comes to lust also. That was Ajamil's problem. So Ajamil is duvidha mein pad gaya. Kyunki usne shuddh bhakti nahi ki thi, aur shuddh bhakti nahi karne ke wajah se phir uske andar wo taste, higher taste nahi mila tha ki wo किसको पकड़े, किसका सहारा ले। तो इसलिए जब उसने विष्णु दूतों के वाक्य सुने तब उसे समझ में आया कि शुद्ध भक्ति का स्तर क्या है, हरिनाम लेने का महत्व क्या है। तब वही जो ज्ञान उसे पहले भी हुआ होगा परंतु उसका साक्षात्कार उसे यमदूत और विष्णु दूत के सामने जो वार्तालाप हुआ उससे मिला उसे। सो एसेंशियली ही डिडंट हैव द हायर टेस्ट, he simply had the knowledge. Unless you put that in practice, unless you put the philosophy of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in practice, it will remain simply some dead words which will not save you in those trying circumstances. So when you want those words of Chaitanya Charitamrita to come alive, you have to practice it in your life. And when you practice it, and of course practicing means practicing with humility, practicing with sincerity. When you practice with humility and sincerity, honesty, then you get the taste not by your own practice, but by Krishna's mercy. And therefore then you can save yourself.
Thank you.
See, many times the realizations might not remain because we might be in the situation of utsamai or ghanatarla, maybe, you know, combination of both, you know, cocktail of both, utsamai and ghanatarla, that the realization came about. And yes, the realization might be authentic also. But because of the other things which are unauthentic within us, they overpower us sometimes. And because of that, we are not able to maintain the consistency of the realization which you are talking about. So because of inconsistency, which is a result of maybe utsamai bhakti or ghanatarla bhakti. See, when Chakravarti Thakur is speaking about these kind of levels of utsamai and ghanatarla, they are not sinful tendencies. He is not talking about sinful tendencies within us. They are left far behind, the sinful tendencies. He is talking about even in devotional service, when we give in to activities which are not favorable. So activities which are not favorable for devotional service doesn't mean they are sinful. Of course, in the absolute sense, many of our acharyas say that if you are not in Krishna consciousness, and everyone is a demon. Chaitanya Charitamrita goes to that extent also to say. So what happens is that many times we are not able to detect. Therefore, these acharyas, they have pinpointed that what you are talking about is already pinpointed by Chakravarti Thakur. No consistency in realization means utsamai or ghanatarla. They have already pinpointed. So the reason is because, you know, we are not practicing devotional service like in a flawless way. Like how, you know, when you drip honey, so when honey is dripped, it just drips down flawlessly. So we are not able to perform our devotional service and because of our anarthas. Many of the anarthas might be on a very gross level that we may not be able to give sufficient time. So that is on a gross level that we are not able to experience devotional service. The more you chant, the more you will get the realization. And this is as far as the quantity is concerned on a gross level. Then you go on the subtle side, on the quality. You may chant for 8 hours, but if it is without quality, then those 8 hours of chanting again will give rise to so many other doubts and, you know, all those things which we discussed about. So many times we see obstacles coming on the path of devotional service, not because of anything external. 99% it is because of inside, the combination of so many anarthas and so many other tendencies from so many previous lifetimes. It's just a combination and they just keep surfacing out time and again. So inconsistency, essentially what you're talking about is inconsistency. Inconsistency is one of the principles of this material world. Because why there are 84 lakh species of life? Because we are not consistent in one life. It is said that the number of desires which we have, depending on those desires, these species have been created. So because we are not consistent even in our material desires, so that rubs off in our spiritual life also. That we remain inconsistent in our spiritual life also, as we used to be in our material life. Everyone in the material life is also inconsistent. Just switch on the TV, they just want newer and newer programs, newer and newer things and arrangements for their entertainment. Why? Because no consistency. So many times in devotional service also, we try to squeeze out some new things because of which we think that now I'm progressing because I'm experiencing, you know, this thing which I had not experienced before. But that is called the wavering mind. That is not consistent mind. Okay, yeah.
When we went through this lecture today,
See, one thing is we want to do service on a physical level and we want to do service on a mental level, you see. So many times we fall into a trap that unless I physically do something for Krishna, we feel that we are not doing anything. We think that I am going to my office, you know, I am associating with so many materialistic people. So therefore, I'm not physically able to, say, come to the temple and do direct devotion service, which maybe some of the residents of the temple might be able to do that. But bhakti is not dependent on the physical aspect. Nothing to do with the physicality of its form. The substance is the most important. And if somebody can perform bhakti with both, that is the best. But if somebody is not able to perform the form of the bhakti, but if the substance is there, and the substance means the eagerness, you know, even if sometimes it is seen that somebody who might be 10 miles away from the temple, and somebody who might be living in the temple, but that devotee who is 10 miles away from the temple might be more in the temple consciously. And the person who is living in the temple might be more unconscious of Krishna, although physically he might be in the temple. So, we have to understand that there is no barrier of any sort. When in the Srimad Bhagavatam it is said, apratihata, that bhakti is apratihata, which means that there is no barrier whatsoever, whether you call it, say, your particular company or your family, your body, your mind, there cannot be any barrier for devotional service. Because nothing can obstruct you as a soul to connect to Krishna of this material world, if you decide. So therefore we have to understand that we should translate bhakti properly in our life. Bhakti should be translated properly. That bhakti goes beyond all the physical aspects, and even though I might be in my family or my job, if I'm conscious about Krishna, even that sincere repentance that I'm not able to physically full-time give myself unto you, even that sincere repentance is what is pleasing to Krishna. Because ultimately what is bhakti? Pleasing Krishna. No matter what all you do on a physical level, no matter how many big mountains you climb on a physical level, but unless you have pleased Krishna, bhakti has not been fully done, performed. So therefore, we have to understand that bhakti is should be unmotivated and it is uninterrupted. That is the nature of bhakti. From our side, it should be unmotivated. When it is unmotivated, ahituki, then it will be apratihata. Apratihata means uninterrupted. If it is motivated from our side, then you find interruptions. Then it is pratihata. So if it is haituki, then there is pratihata. If it is ahituki, then there is apratihata bhakti. So it is like, you know, the Damodar Leela. Two fingers short. You heard of that? Two fingers short. One was our endeavor, the other was Krishna's mercy. So in this verse, if you take ahituki and apratihata, then you should say that from our side, our bhakti should be ahituki and apratihata is from Krishna's side. That Krishna will never, if he sees that this devotee is sincere without any material motivation, then Krishna will remove all pratihata, all barriers of whatever sort. So that is, we have to wait to receive from Krishna's side. Okay, thank you all very much. Hare Krishna. And we'll try to make it more simplified. In fact, I was busy a lot for a couple of days. So therefore, we'll have some more examples which will simplify these technical terms. Sometimes, you know, just looking at the technical terms, the mind shuts off. This is too much. Beautiful. Then immediately, you know, our intelligence shuts off. And so we'll try to simplify it more in our future sessions. Of course, Chakratipad, he himself is simplifying it. Why it is so technical? Because our anarthas are so complex. So it's not that Chakravarti Thakur is making it very complex. You know, just like some of the diseases, when the disease is so complex and you tell to the doctor, it's a simple disease, batao na. Are bhai, tumhara disease itna complex hai, simple kya batao? So because our anarthas are so complex, therefore the terms which are used by the acharyas also appear to be technical and complex. So therefore, bhakti is simple for the simple, which is a very complex statement for us. So we'll try to simplify it more and more so that we can get the best of what our acharyas have to give to us, so that we can come out of these different anishtita kind of bhaktis and come to the nishtita bhakti. Srila Vishwanath Chakri Thakur ki. So we'll have a short kirtan.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, जय श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदी। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर विद्याजा जड़ेन्द्रियता है का जीवे फेले विषय सागरे तारमधि जिह्वारति।